ہاں جی
جیو سمادھی مانا بے حد میں کیا ارتھ ہے بابا؟ جیو سمادھی ہوتے ہیں نا مہا پروش لوگ, وہ سائی بابا راگوندر سوامی, جیو سمادھی ہوتے سمادھی کو پوجا کرتے ہیں نا, دیو میں رہتے بھی سمادھی کر کے جیو سمادھی.
جیو سمادھی کیا ہوتا ہے؟
جیون کا سمادھی,
مانا زمین میں بیٹھ جاتے ہیں اور کمبک چڑھا کے سمادھی میں اپنا شریر چھوڑ دیتے ہیں, نل میں چلے جاتے ہیں. وہ نل میں چلا جانا ایسے ہے جیسے کوئی سسکتی میں سو جاتا ہے, سپن بھی نہیں یاد آتا. اس سے کوئی مکتی نہیں ہو جاتی ہے آتما کی. آتما جیسے کہ اندھکار میں چلی جاتی ہے. آتما کی سمرتی بھی نہ رہے تو فائدہ کیا ہوا؟ اور بھارت کی گورنمنٹ نے ہاتھیوں کو نیشنل اینیمل گھوشت کیا, اس کو بچانے کا کام کرنا ہے. اس کا بےحد کا ارتھ کیا ہے؟ ارے بابا نے تو بتا دیا نا, یدھ ہوتا ہے تو یدھ میں پیادے بھی ہوتے ہیں, گھڑ سوار بھی ہوتے ہیں, ہاتھی سوار بھی ہوتے ہیں, عورت سوار مہاویر بھی ہوتے ہیں. تو جو ہاتھی کی طرح ہے بھاری بھاری کام کرنے والے ہیں یدھ بھوم میں, جیسے کہ کوئی قلعہ توڑا جاتا ہے تو قلعے کے پھاٹک کو توڑنے کے لیے گھوڑا کام میں نہیں آئے گا, اونٹ کام میں نہیں آئے گا, پیدل کام میں نہیں آئیں گے. اس کو کام میں لیتے ہیں, ہاتھی کو کام میں لیتے ہیں. اس کے مستک میں چوڑا سا فال لگاتے ہیں لوہے کا, جس میں کیلا ٹکے ہوئے ہوتے ہیں. دوڑتا ہوا ہاتھی مدمست ہو کر کے آتا ہے نشے میں, اور قلعے کے وہ جو بھاری بھاری کباڑ ہوتے ہیں ان میں ٹکر مارتا ہے, کباڑ ٹوٹ جاتے ہیں. قلعہ کا دروازہ ہی ٹوٹ جائے تو آدھی فتح تو وہی ہو جاتی ہے. تو ایسے ایسے ہاتھی روپی مہارتھیوں کا وشیش مان ہونا ہوتا ہے. آج بھارت میں ان ہاتھیوں کی سرکشا کرنے کی بہت کوشش کر رہے ہیں. ان ہاتھیوں سے تو ہڈی ملتی ہے, ہاتھی دانت ملتا ہے تو بڑی کمائی ہو جاتی ہے. یہ بےد کے ہاتھیوں بھی تو ہڈیاں بڑی مضبوط ہیں, ہڈی ہڈی پرشاد کرنے والے ہیں. پرنتو ان کی سرکشا نہیں ہو پا رہی ہے, جیسے وہاں لوکی گورنمنٹ میں سرکشا نہیں ہے ویسے الوکی گورنمنٹ میں بھی کوئی سرکشا نہیں. یہاں بھی ابھیان ہے وہاں بھی ابھیان چلایا جا رہا ہے. जैसे टाइगर के लिए बचाने का विश्व में अभियान चल रहा है, टाइगर की किस्में कम होती जा रही है, संख्या भी कम होती जा रही है, ऐसे हाथियों की भी संख्या कम होती जा रही है क्योंकि जंगल बहुत काटे जा चुके हैं। तो जंगलों को छोड़ करके, पहाड़ों को छोड़ करके उन्हें मैदान में आना पड़ता है, और मैदान में आने से तो नुकसान बहुत हो जाता है। ये जंगलों की सुरक्षा करना, हाथियों की सुरक्षा करना, टाइगर्स की सुरक्षा करना, ये अभियान चलाया जाता है। और जोर से बोलो,
सतयुग में
देवताएं सोलह कला संपूर्ण,
दो कला कम हो जाती,
त्रेता में आकर दो कलाएं कम हो जाती है,
अहिंसा कलाएं कम हो जाती,
चंद्रमा की सोलह कलाएं होती हैं, एक महीने में धीरे धीरे बढ़ता है रोशनी चंद्रमा की, तो कहते हैं सोलह कला संपूर्ण पूर्णमासी हुई, फिर धीरे धीरे चंद्रमा की रोशनी कम होती जाती है, तो कहते हैं सोलह कलाएं जो है वो घटती गई धीरे धीरे। ऐसे ही आत्मा की जो रोशनी डिम होती जाती है उसका नाम है सोलह कला संपूर्ण से कलाहीनता की ओर जाना। अलग अलग कला कोई कलाएं नहीं है कि नृत्य कला, संगीत कला, मकान बनाने की कला, ऐसी कोई बात नहीं। यह आत्मा का शक्ति का मेजरमेंट है सोलह कला संपूर्ण। और
हनुमान को राम लक्ष्मण सीता अंदर उसको शादी के अंदर दिखाता है ना, उसका छठ का
मैंने याद रहे ना, हनुमान को सदैव राम सीता की याद रहती है, तो उनके माता पिता है ना, जैसे तो माता पिता की याद रहना तो अच्छी बात है। सीना चीर के दिखाएंगे कि हमारे अंदर क्या है, बाकी कोई सीना चीरने की बात नहीं है, ये अंदर में याद की बात है। और
आत्मा भाई का प्रश्न है कि उठते बैठते याद में रहना, काम करते हुए भी याद में रहना, तो वैसे ही भोजन पकाते वक्त में याद में रहना, उसका प्रभाव अनुभव कैसा मिलेगा?
जो भी काम हम करते हैं उस काम करते समय हमारी स्थिति कैसी है, उस स्थिति का कार्य के ऊपर प्रभाव पड़ता है। अब भोजन बनाना तो बहुत ऊंची चीज है, भोजन हमारे अपने लिए भी बनता है तो दूसरों के लिए भी बनता है, अपने हाथ का बनाया हुआ भोजन उसमें अपने वाइब्रेशन भरे हुए होंगे। आत्मा सबसे जास्ती अपने को प्यार करती है, स्वयं को प्यार करती है कि दूसरों को प्यार करती है? सबसे पहले अपने को, अपने से सबसे ज्यादा प्यार होता है। तो भोजन बनाने वाला जब उसकी वृत्ति ही है अपने कल्याण के लिए, तो वो अपना भी कल्याण करता है और साथ साथ उस भोजन से दूसरों का भी कल्याण करता है। वाइब्रेशन बाबा की याद के होंगे तो बाबा की याद के वाइब्रेशन उस भोजन में भी भर जाएंगे। जो भी उसको खाएंगे उनकी वृत्ति भी अच्छी बनेगी। कोई कोई इन बातों पर विश्वास नहीं होता है तो चार छह दिन वैश्याओं के यहां जाकर के भोजन खा के देख लो, अवस्था खराब हो जाएगी। बाबा की याद से महरूम हो जाएंगे क्योंकि वैश्याओं के यहां तो व्यभिचार ही व्यभिचार चलता है। बुद्धि व्यभिचारी बनने से बाबा की याद आएगी नहीं। तो बाबा की याद में रह करके भोजन बनाने से वायुमंडल भी शुद्ध होता है। आप व्यभिचारी याद का वायुमंडल बनता है, ये बहुत बड़ी सेवा है। इसलिए एक मुरली में बोला है कि संदेशियां ध्यान में जाती थी, देखती थी कि इतने बड़े विश्व के महाराजन और रसोई घर में भोजन पका रहे हैं, तो ये कोई छोटा मोटा काम थोड़ा ही है। जो चुल पर सो दिल पर कहा जाता है, चूल्हे पे भोजन बनाने वाला वो पहले दिल पर चढ़ता है। और
बाबा अष्टदेव और नवरत्न में ज्यादा वैल्यूबल कौन है? इसलिए नवरत्न भी कहते हैं ना।
देव सूर्यवंशी हैं क्योंकि देवता उनको ही कहा जाता है जो पूरे 84 जन्म लेते हैं, 16 कला संपूर्ण बनते हैं। और जो रतन है वो एक दूसरे से कम वैल्यू वाले होते हैं। जैसे हीरा सबसे जास्ती वैल्यू वाला है, उसके बाद जो और रतन है, माणिक है, मोती है, हीरा है, पन्ना है, मूंगा है, ये एक दूसरे से कम कीमत वाले हैं। जैसे कि धर्म नंबरवार आते हैं और नंबरवार उनकी उम्र है। इस संसार में कोई धर्म लंबे टाइम तक टिकता है और कोई धर्म थोड़े टाइम तक टिकता है। जिसमें ज्यादा शक्ति होगी वो ज्यादा समय तक टिकेगा और जिसमें कम शक्ति होगी वो कम समय तक टिकेगा। सबसे ज्यादा ताकत वाला है सत्य सनातन धर्म, जो डायरेक्ट ज्ञान सूर्य के द्वारा स्थापन किया जाता है। ऐसे ही हर धर्म के प्रणेता हैं, नंबरवार हैं, नंबरवार आते हैं, नंबरवार धर्म स्थापन करते हैं। तो वो रतन हैं, वो हीरे नहीं हैं सब, और वो नंबरवार रतन है। उन रतनों में एक होता है नॉन वैल्यूएबल, पुखराज उसे कहते हैं। वो दूसरे रत्नों की कीमत बताने के लिए होता है, 8 के साथ ही डाला जाता है, तब 8 की कीमत गिनी जाती है, तो 9 रत्न कहे जाते हैं, नवग्रह भी कहे जाते हैं। सबसे बड़ा है बृहस्पति ग्रह, फिर नंबरवार ग्रह हैं। सदा काल रहने वाला बृहस्पति है, और ग्रह विनाश काल में टकरा करके खत्म हो जाते हैं। जैसे और धर्म सब टकरा करके विनाश काल में खत्म हो जाएंगे, एक सत्य सनातन धर्म ही रह जाएगा। फिर जब द्वापर शुरू होगा फिर उनके शुरुआत होती है। नंबर वन ग्रह इसलिए कहा जाता है कि इनका कनेक्शन है। जो सूर्यवंशी अष्टदेव है वो सबके पूर्वज हैं। तो पूर्वजों के प्रति सभी का प्यार रहता है। पूर्वज का अर्थ है पूर्व में जन्म लेने वाला, सबसे पहले जन्म लेने वाला। हर धर्म की चुनी हुई श्रेष्ठ आत्माएं भगवान से आकर के पढ़ती है। फिर भी पढ़ाई में नंबर वार रह जाती है। तो जो नंबर वार अष्टदेव है उनमें थोड़ा थोड़ा अंतर है फिनिशिंग का। नवरत्नों में ज्यादा अंतर दिखाई पड़ता है। वो बहुत पावरफुल आत्माएं भी हैं अष्टदेव। क्योंकि अन्य धर्मों के बीज रूप है, बीज में सबसे जास्ती ताकत होती है। बीज धरणी में बोया जाता है तो जड़ें तैयार होती है। तो जड़ों के रूप में फाउंडेशन लगाने वाले भी हैं, उनकी अपनी अपनी धरणी भी है। वो जड़े भी चैतन्य है, धरणी भी चैतन्य है, बीज भी चैतन्य है। तो जैसे कि माँ बाप और बच्चा मिलकर के परिवार बनता है, ग्रह बनता है, ऐसे एक एक ग्रह बन जाता है। उन्हें ग्रह नक्षत्र भी कहते हैं। जैसे इस सौर मंडल में सूर्य नक्षत्र है और सबको रोशनी देने वाला है, कोई से रोशनी लेने वाला नहीं है, बाकी सब ग्रह हैं। आसमान में ऐसे बहुत से सितारे होते हैं जो टिमटिमाते रहते हैं। वो टिमटिमाने वाले सितारे नक्षत्र हैं, सूर्य के समान दैदीप्यमान हैं। बाकी ऐसे हैं जो टिमटिमाते नहीं हैं, उनकी रोशनी स्थिरियम है, उनको ग्रह कहा जाता है। उन ग्रहों का भी कोई टुकड़ा टूटता है उसे उपग्रह कहा जाता है। जैसे हमारी सौर मंडल में सूर्य नक्षत्र है, पृथ्वी ग्रह है, चंद्रमा उपग्रह है। तो जैसे कि ये एक परिवार बन जाता है। ग्रह बन जाता है, घर ग्रस्त बन जाता है। ऐसे ही लिंक है। और
मूर्ति का भी चित्र है और शिव का भी चित्र है, चित्र शरीर को कहा जाता है। चित्र शरीर को कहा जाता है,
चित्र साकार को कहा जाता है, विचित्र निराकार को कहा जाता है। हाँ जी,
शिव का चित्र माना जाता है।
शिव का भी चित्र है,
त्रिमूर्ति का भी चित्र।
हाँ, अगर बाबा ने बोला है कि त्रिमूर्ति का भी चित्र है तो जिसके चित्र हैं तो चरित्र करने वाला भी जरूर होगा। ब्रह्मा के रूप में स्थापना का पार्ट बजाने वाला कोई है 100%, तो जरूर कोई साकार में भी हस्ती है। ऐसे ही पालना का पार्ट बजाने वाला कोई विष्णु है, विषय विकारों से सर्वथा परे, तो जरूर कोई प्रैक्टिकल में साकार में है। चित्रधारी है, ऐसे नहीं चित्र से परे है, विचित्र है, निराकार है। आत्मा तो सबकी निराकार होती है, लेकिन कोई आत्मा साकार रूप में है, पार्ट बजाने वाली होती है, साकार रूप में जन्म लेने वाली होती है। जो आत्मा साकार में जन्म नहीं लेती है वो सिर्फ एक ही तुरीय आत्मा है, उसका नाम शिव है। वो शिव नाम बिंदी का ही है। मुरली में अगर कहीं बोला गया है कि शिव का चित्र भी है तो उसका अर्थ यही है कि वो शिव साकार रूप धारण करता है, उसे चित्र कहेंगे। और हिंदी एक ऐसी भाषा है जिसमें सभी भाषाओं के शब्द समाये हुए हैं। और ज्यादा से ज्यादा तादाद में समाये हुए हैं। संस्कृत के भी शब्द समाये हुए हैं, उर्दू के भी शब्द समाये हुए हैं, फारसी के भी शब्द समाये हुए हैं, यहाँ तक कि अरबी शब्द भी समाये हुए हैं और अंग्रेजी के भी शब्द समाये हुए हैं। हिंदू एक ऐसा धर्म है दुनिया में जहां से कन्वर्शन होकर के सब धर्मों में जाते हैं, और दुनिया में दूसरे कोई ऐसे धर्म नहीं है जो कन्वर्ट होकर के सब धर्मों में जाते हो। ऐसे ही हिंदी भाषा भी है, माने हिंदी भाषा को विश्व भाषा होना चाहिए, लेकिन आज विश्व की भाषा, इंटरनेशनल भाषा सिर्फ अंग्रेजी है। नहीं तो हिंदी को विश्व की भाषा होनी चाहिए। हाँ,
वैष्णवी देवी कहने हैं बाबा, शिव बाबा कैसा प्रवेश करेगा?
वैष्णवी देवी में शिव बाबा कैसे प्रवेश करेगा? विष्णु देवता पवित्र है या अपवित्र है? तो पवित्र में शिव बाबा प्रवेश करेगा है? शिव बाबा अपवित्र में प्रवेश करता है या पवित्र में प्रवेश करता है? पवित्र में तो प्रवेश नहीं करता। शिव बाबा आता ही है अपवित्र को पवित्र बनाने।
और पतित से पतितन में आते हैं तो पता की तरफ अर्जुन जन में इन कारणों से पतित कहा जा सकता है, क्योंकि वो उमर करके क्या
आज की दुनिया में जो कुमार हैं पढ़े लिखे बीए एमए पीएचडी पास करते हैं, को एजुकेशन में पढ़ाई पढ़ते हैं, या जो पुरानी पढ़ाई पढ़ाई जाती थी भारतवर्ष में गुरुकुल की शिक्षा, वो पढ़ाई पढ़ते हैं? कौन सी पढ़ाई पढ़ते हैं? डागली पढ़ाई पढ़ते हैं, कक्षा एक से लेकर के और एमए बीए पीएचडी तक, या डागली पढ़ाई पढ़ते हैं? ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ते हैं या डागली पढ़ाई पढ़ते हैं? तो डागली पढ़ाई पढ़ के क्या बनेंगे? कुत्ता कुतिया ही बनेंगे, कुछ और बनेंगे? अरे बोलो। अरे तो ऐसे नहीं है कि जो ऊपर से कुमार दिखते हैं वो वास्तव में कुमार होते ही है। बाबा ने तो बोला कि मैं आत्मा को देखता हूँ, बल पतित तन में आता हूँ, लेकिन देखता किसको? आत्मा को देखता हूँ। तो आत्मा को जब देखता हूँ तो मेंटलिटी के आधार पर बाबा ने बताया कि उपन्यास पढ़ने से और फिल्म देखने से सबसे जास्ती आत्मा का पतन होता है। कैसे संकल्प चलेंगे? विकारी और गंदे से गंदे संकल्प चलेंगे, फिल्म देखने वालों के और उपन्यास पढ़ने वालों के। ये सबसे जास्ती नीचे गिराने वाली दो चीजें हैं। तो आप किस आधार पर कहेंगे कि जो प्रजापिता है, कुमार है, दुनियावी दृष्टि से देखने के लिए कुमार होता है, लेकिन क्या अंदर से भी कुमार है? कहेंगे कुमार? अगर मेंटेलिटी में वही बातें चलती रहती हो तो कुमार। हाँ, एक बात तो जरूर है जो किसी विचारक ने ही बोली है कि कुमार की 9999 चिंताएं और जो गृहस्थी गिरिहस्थी भिकारी माने जाते हैं उनकी गृहस्थी की 9999 चिंताएं और कुमार की एक चिंता, ये बराबर हो जाती है। तो ज्यादा गिरा हुआ कौन है? कुमार ही तो ज्यादा गिरे हुए हुए। और हाँ, ये जरूर है कुमार अगर उस प्रवृत्ति को, उस व्यक्ति को कंट्रोल कर लें, दुष्ट संकल्प को कंट्रोल कर लें, तो बाबा ने वाला बोला है कुमार जो चाहे सो कर सकते हैं। सारे विश्व में आग लगाना चाहे तो आग लगा सकते हैं, सारे विश्व का नाश करना चाहे तो नाश कर सकते हैं, और नई दुनिया बनाना चाहे तो नई दुनिया बना सकते हैं। जो चाहे सो कर सकते हैं, ये वरदान अदर कुमारों को नहीं मिला हुआ है, अदर कुमारियों को नहीं मिला हुआ है, कुमारियों को नहीं मिला हुआ है।
तो आज ही ब्रह्मा के तन में कैसे?
ये तो आप कह रहे हैं कि ब्रह्मा के तन में आदमी आया,
आपके ज्ञान से।
आपने कहा ये ज्ञान मुरली थोड़े ही कहती है कि मैं ब्रह्मा दादा लेकर आज ब्रह्मा के तन में पहले आता हूँ। ये तो आपको पढ़ाई पढ़ाई गई है मनुष्य गुरुओं के द्वारा, लेकिन मुरली में तो क्या बोला गया है? मुरली में तो यही बोला गया है ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे बच्चे थे जो मम्मा बाबा को डायरेक्शन देते थे, उनमें शिव बाबा प्रवेश करके वाणी चलाते थे, मम्मा बाबा उनसे बैठ पढ़ते थे, सीखते थे। राजयोग की शिक्षा वो देने वाले थे, दिल कराते थे बैठ करके योग की। एक माता जी का प्रश्न है, कोई के भी बूढ़े माता पिता शरीर छोड़ देते हैं, और साल साल में उनको पिंडदान करते हैं, अर्थात पिंडदान मनाते हैं। उस दिन भाई के घर में क्या खाना खा सकते हैं? पिंडदान मनाते हैं या श्राद्ध करते हैं माता पिता का, तो उनके घर में जाकर खाना खा सकते हैं या नहीं? और उस भाई के माता पिता और शरीर छोड़ने वाले माता पिता के परिवार वाले साड़ी अथवा कपड़े धन आदि दान देते हैं तो क्या वो ले सकते हैं? बोलो, लेने में हर्जा है या नहीं हर्जा है? खाना खा सकते हैं उनके यहाँ, नहीं खा सकते हैं? जो पिंडदान देते हैं श्राद्ध करते हैं उनके घर में खाना खा सकते हैं या नहीं खा सकते हैं? क्यों नहीं खा सकते? ज्ञान में चलते हैं वो है? ज्ञान में चलते हैं भाई है? वो आपको नहीं बताते, आपको नहीं बताते हम पिंडदान कर रहे हैं श्राद्ध कर रहे हैं, ऐसे ही आपको निमंत्रण देते हैं तो आप खाना नहीं खाएंगे जाके उनके घर? माताएं क्या कह रही है? बाबा ने तो कहा लौकिक परिवार वालों के साथ तोड़ने वाली है, है? खाना खाने के लिए नहीं, अच्छा धन वगैरह ले ले उनसे, साड़ियां वाड़ियां देते हैं तो ले ले। अरे बाबा ने बोला है हमारा लेन देन किसके साथ है सारा? एक शिव बाबा के साथ, तो सारा कंटा ही खत्म हो जाता है, कट जाता है। इस ब्राह्मण की क्या स्थिति है, वो अंदर अंदर क्या पुरुषार्थ करता है, क्या करता है क्या नहीं करता है हम जानते हैं क्या? पता चलता है?
नहीं।
इसलिए जितना हम अपने को सेफ रखें उतना ज्यादा अच्छा है।
तोड़ निभाने का और सेफ रखने का बात एक से एक दुखता क्या
है?
तोड़ निभाने का
हाँ,
और सेफ रखने का।
सेफ
सेफ बने एक बाबा से
सेफ हो जाओ बोल रहे हैं ना आप, सेफ रखने के लिए
हाँ,
तो तोड़ निभाओ भी बोल रहे हैं।
तोड़ निभाने का मतलब बातचीत करो, मिलो जुलो, ऐसे नहीं हम बात ही नहीं करेंगे, हम मिलेंगे जुलेंगे नहीं। सत्युग में 8 जन्म होते हैं, त्रेता में 12 जन्म होते हैं, तो एक युग का 1250 वर्ष है। सत्युग में एक व्यक्ति का 150 वर्ष आयु होती है, तो टोटल 1250 वर्ष हो रहे हैं। और उसमें 50 वर्ष एक्स्ट्रा हो रहा है, सारे कल्प में। तो पार्टिकुलर व्यक्ति के लिए ये बात लागू होती है क्या? तो पार्टिकुलर व्यक्ति कौन है? ये 50 वर्ष जो एक्स्ट्रा निकल रहे हैं वो तो किसके लिए निकल रहे
हैं? वैसे देखिए तो क्राइस्ट पूर्व और क्राइस्ट के बिफोर क्राइस्ट और आफ्टर डेथ कहा जाता है, और क्राइस्ट का जो जीवन काल का है वो हिसाब में नहीं आता है।
बिफोर क्राइस्ट माने क्राइस्ट के जन्म लेने से पहले और आफ्टर क्राइस्ट,
आफ्टर वही क्राइस्ट,
आफ्टर क्राइस्ट माने क्राइस्ट के शरीर छोड़ने के बाद। पहली बात तो ये है कि क्राइस्ट का असली जन्म कब हुआ ये भी पता नहीं है, सिर्फ कहते हैं। तो कहने में और प्रैक्टिकल में अंतर पड़ जाता है। हर युग में जो 50 वर्ष एक्स्ट्रा आ रहे हैं वो हर युग में नहीं आ रहे हैं, वो सिर्फ सतयुग की बात है। और ये एवरेज एज है, फिक्स नहीं है कि हर आत्मा की 150 वर्ष ही आयु होती है सतयुग आदि में और सतयुग अंत में। नहीं, सतयुग अंत में 125 वर्ष भी आयु बहुतों की होती होगी। हो सकता है सतयुग आदि में बहुत सी आत्माएं ऐसी हो जिनकी 150 वर्ष से ज्यादा की आयु हो गई हो। आज एवरेज एज भारतवर्ष में 30 साल मानी जाती है, इसका मतलब ये नहीं है कि सबकी 30 साल ही होती है, कोई की ज्यादा भी होती है कोई की कम भी होती है। और क्राइस्ट और कृष्ण की राशि मिलाते हैं। हाँ
इसको जन्म से मालूम होता है।
हाँ तो
दोनों की राशि मिलाते हैं ना तो
हाँ
पता चलता है वो।
हाँ तो क्या पूछ रहे?
तो पता चलता है ना क्राइस्ट कब पैदा हुआ है।
कोई एक टाइम पे पैसा पैदा होता है तभी राशि थोड़े ही मिलती है। ये कोई जरूरी थोड़ी है कि एक टाइम पर पैदा हो, उसी वर्ष में पैदा हो, उसी युग में पैदा हो तब ही राशि मिलेगी।
जन्म का जन्म थोड़ी पता।
हाँ जी छोटा सब बाप को याद करते हैं पर प्राप्ति में फर्क पड़ जाता है। हर एक समझते हैं मेरी याद सतो प्रधान है। मोह से याद करना और प्यार से याद करने में फर्क क्या है? अरे मोह शरीर से होता है या आत्मा से मोह होता है, ये फर्क है। मोह काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की पैदाइश ही किससे होती है? शरीर से, देह भाव से।
राजा बनने के लिए खाली आत्मा होना जरूरी है। राजा बनने के लिए
हाँ
राज वाली आत्मा होना जरूरी है,
आदि वाली आत्मा होना जरूरी है।
इंजीनियर बनने के लिए इंजीनियर जैसा चाहिए, ऐसा राजा बनने के लिए राजा वाली आत्मा चाहिए।
हाँ हाँ,
तो राम को विष्णु का महाराज, राम वाली आत्मा को विष्णु का महाराज बना रहा है।
हाँ,
मेरा का तो विष्णु का महाराज भाई नहीं।
हाँ,
वो विष्णु का महाराज कैसा बना?
विष्णु का महाराज है कैसे बनता है?
शिव तो नहीं बनता। हाँ, राजा कैसे बनता? राम,
हाँ माने राम वाली आत्मा जो है विष्णु का महाराजा कैसे बन जाती है? क्या वो विष्णु का महाराजा बनती है वास्तव में? अरे बेताज बादशाह है या ताज वाला बादशाह है?
बेताज।
तो प्यार की बात है, स्नेह का सौदा है, प्यार का सौदा है, प्यार के आधार पर विश्व की बादशाही है। वो बादशाही नहीं है जिसे हिटलर, नेपोलियन और मुसोलिनी ने जो विश्व की बादशाही लेनी चाहिए, जबरियन जबरदस्ती हमला करके हिंसा करके, ऐसी कोई बादशाही नहीं ली है। शिव बाबा प्यार का सागर है, तो प्यार के आधार पर दिलों को जीतता है या हिंसा के आधार पर जीतता है? प्यार के आधार पर जीतता है। और
बाबा पीछे नहीं पड़े थे, पीछे नहीं पड़े थे
ये।
हाँ, पूरा नहीं पड़े।
बाबा ऐसे भी हो सकता है क्या कि बाप को सारा तन मन धन अर्पण करें फिर भी मन पूरा अर्पण नहीं होता है? क्यों? जब कहा जाता है जहां हमारा धन होगा वहां हमारा मन होगा, और कहा जाता है जहाँ हमारा धन होगा जहाँ हमारा तन होगा वहाँ हमारा मन होगा, फिर अगर किसी ने अपना पूरा धन दे दिया और तन भी अर्पण कर दिया ईश्वरीय सेवा, तो फिर दोनों चीजें जब दे दी तो मन अर्पण हो जाना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? फिर मन पूरा अर्पण क्यों नहीं हो पाता? या सब एक जैसा तन अर्पण करते हैं? कोई तो ऐसे भी हैं लिख करके दे देंगे तन तेरा, अब जब कहा जाए लाओ हमको जे बीमारी हमको बे बीमारी हमको ऐसा है हमको वैसा है, दुनिया भर के वो बहानेबाजियां बना देंगे। धन के लिए भी हमने बैंक में डाला हुआ है उसका 10 साल का ब्याज अभी पूरा नहीं होना है, हमने उसमें जो इंश्योरेंस कंपनी में डाला हुआ है उसका टाइम अभी पूरा नहीं हुआ है, मकान बेचने के लिए डाला हुआ है, 20 बातें इस तरह की बताते हैं, या तो बहानेबाजी कर देते हैं या तो क्रोध से देते हैं, प्यार से अर्पण नहीं करते। मन कब होगा? जब सतो प्रधान दान होगा तन का और धन का, तब मन अर्पण पूरा होगा, या तमो प्रधान और रजो प्रधान दान होगा तो अर्पण होगा। दान भी देखा जाता है तन किस रूप में दान किया, धन किस रूप में दान किया, मजबूरी में तो नहीं करती है।
वेदों में पुराने वेदों को ऋग्वेद कहते हैं, इसका बेहद
वेद हैं चार, धर्म भी हैं मुख्य चार, जैसे चार धर्म है सत्य सनातन धर्म जिसे देवता धर्म कहते हैं, फिर इस्लाम बौद्ध क्रिश्चियन, ऐसे वेद हैं चार, ऋक वेद, ऋक माने सच्चाई, तो सच्चाई सदैव रहने वाली है या बीच में कभी खत्म होने वाली है?
सदैव।
जो सच्चाई है वो सदैव थी और सदैव है, सदैव रहेगी। इसलिए ऋग्वेद जो है वो सदा काल का प्राप्ति कराने वाला वेद है। और वेदों की इतनी महिमा नहीं है, उसी तरह सृष्टि की चार बीज रूप आत्माएं हैं मुख्य, सनत सनातन सनंदन सनत कुमार। जो सनत है वो ज्ञान के आधार पर सबसे बड़े माने जाते हैं, तो जो सबसे बड़ा है वो आज में भी है तो अंत में भी है, जो बाद में आने वाले हैं वो सदा काल रहने वाले नहीं है। और बाबा कहते हैं किसी को दुख देना नहीं है, दुख लेना नहीं है, परंतु कोई कोई तो छोटी छोटी बातों से ही दुख ले लेते हैं। जिन बातों में कुछ भी दुख लेने की बात ही नहीं है तो उसका क्या किया जाए? इसको दुख देना कहेंगे क्या? उनको सच बात बताओ तो भी दुख ले देते हैं, तो इससे बोझा चढ़ेगा क्या? छोटी बात है और छोटी बात को कोई बड़ा करके ले लेता है। कोई की आदत होती है तिल को ताड़ बनाना, रुई को पहाड़ बनाना, लेकिन रुई तो है, तो तिल है, तो बीज है, तो छोटा बीज होता है, छोटे बीज से ही बड़ा झाड़ बनता है, तो वो भी नहीं होना चाहिए। दूसरे की भावनाओं का ख्याल रख के बोलना अच्छी बात है ना, इसलिए तो बाबा ने बोला कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो। कोई छोटी सी भी दुख देने की बात है तो उसको बोलने का ढंग ऐसा हो कि मीठे से मीठे तरीके से बोल दो, जो उसकी हंसी छूट जाए, सुनने वाले को दुख दुख न लगे। थोड़ा सुख दिया या दुख लेने वाले ने दुख भले लिया, उसने तो श्रीमत के अनुकूल नहीं किया। बाबा तो कहते हैं दुख लेना नहीं है, उसमें इतनी कैपेसिटी नहीं है कि कोई दुख दे और दुख महसूस न करे। दुख लेने की आदत, दुखी होने की आदत है जन्म जन्मांतर की। तब वो प्रधान आत्मा होती है, थोड़ी सी बात में ही दुखी हो जाती है। तामसी आत्मा, दुख देना और दुख लेना यही उसका धंधा है। छोटी छोटी सी बात में उद्योग को प्राप्त हो जाना, दूसरों को उद्योग पैदा कर देना, ये तमोप्रधान आत्मा का धंधा है। लेकिन सतोप्रधान आत्मा का धंधा ये है कि जो भी बोले सोच समझ के बोले, جانتے تو ہیں یہ آتما اس طرح کی ہے, چھوٹی باتوں کو بڑا بناتی ہے, تو اپنی انگلی بچانا چاہیے نا. ہمارا تھوڑا سا واقعہ, چھوٹا سا واقعہ بھی اس کو ادویلت کر دیتا ہے, وائبریشن خراب کرے گا, دوسروں کی ڈسٹربس کرنے لگ پڑے گا. تو کچھ نہ کچھ چیپ لگے گا تو ہم کو بھی. اور
کافی جانے والے پوتر رہتے
ہیں,
کافی جانے والے پوتر
رہتے ہیں, پوتر رہ سکتے ہیں,
رہتے ہیں,
پوتر رہتے ہیں. نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے, ایسی کوئی بات نہیں کہ کاشی جانے والے سب پوتر رہتے ہیں, یہ کوئی بات نہیں ہے. یہ صرف بتایا جو کاشی میں جا کے مریں گے وہ سورگ میں جائیں گے. جانے ماتر سے پوتر نہیں ہو جاتے ہیں کوئی, کاشی میں جا کر کے بھی مرنے کا پرسارتھ کرنا پڑتا ہے. کاشی میں جو جاتے ہیں وہ کوئی پوتر نہیں رہتے ہیں. یہ کوئی ضروری نہیں کہ جو کاشی میں جاتے ہیں وہ پوتر رہتے ہی, یہ کوئی نیم نہیں.
مرنے کے لیے جا رہے
ہیں, مرنے کے لیے جا رہے ہیں
تو ضرور پوتر رہتے ہی جانا پڑے گا نا.
مانے جانے ماتر سے ہی اسی کھڑ سے پوتر ہو جائیں گے. ارے پرسارتھ کرنا پڑے گا کہ نہیں کرنا؟ ہاں ماحول ان کو اچھا ملے گا, تو اچھے ماحول میں یہ سمبھاونا زیادہ ہے کہ وہ اپن کو جیتے جی مار سکے, نشٹ ہوا جلدی بن سکے.
ہندو دھرم میں دھرم میں ہی کیوں دکھائی دیتا ہے؟
دوسرے دھرم تو سب اپوتر ہیں ہندو دھرم کے مقابلے.
تری کو سمانتا کیوں نہیں دیا گیا؟
میں ابھی دنیا میں استری کو زیادہ سمانتا دی جا رہی ہے آپ کے حساب سے, یہ سمانتا نہیں ہے.
دواپر یوگ سے کلی یوگ سے دواپر یوگ تو اتم ہی ہے نا.
ہاں دواپر اتم ہے کیونکہ وہاں پیورٹی کو زیادہ مہتو دیا جاتا تھا بھارت ورش میں. ابھی ودیشی سبھیتا کا پربھاؤ پڑ گیا اس لیے اتنا مہتو نہیں ہے استریوں کی پوترتا کے اوپر.
وہاں تو استری اپنی اچھا سے
کرتی
تھی.
ہاں جب کلی یوگ آیا تو کلی تو تم پردھان یوگ ہے نا, تو ہر کام زبردستی بھی کرایا جاتا ہے. وہ زبردستی ہی تمو کو جانتا ہے. سویچھا سے کوئی پوتر رہے یہ اچھی بات ہے, جبرین اس کو پوتر رکھا جائے یہ ٹھیک بات نہیں ہے. جو زبردستی کرنا یہ مسلمان دھرم کی بات ہے. کوئی بھی دھرم کی دھارنا سویچھا سے ہی ہونی چاہیے. دھرم کے معاملے میں دھارنا کے معاملے میں جو زبردستی یہ اچھا دھرم نہیں ہے, اچھی دھارنا نہیں ہے. باقی ایسا نہیں ہے کہ دواپر یوگ میں اگر استریاں ستی پرتھا کو اپناتی تھی تو وہ استریوں کے پرتی سمانتا کا بھاؤ نہیں تھا, اور آج استریاں ستی پرتھا نہیں مانتی ہیں تو سمانتا کا بھاؤ ہے؟ نہیں.
بابا جاتے ہیں अभी बाबा के पास गई, बाबा के द्वारा ही बना नहीं सकते।
मूल बात है अपने धन को सुरक्षित करने की। तो वो बाबा ने बताया कि जितना धन जितना प्रॉपर्टी माउंट आबू में सुरक्षित की जा सकती है उतनी दुनिया में और जगह सुरक्षा नहीं है। बैंक में डालेंगे बैंक का भी कोई ठिकाना नहीं है, विदेशी बैंक में डालेंगे उसका भी कोई ठिकाना नहीं है, कंपनियों में डालेंगे कंपनियां फेल होती जा रही है वो भी कोई हिसाब नहीं, इंश्योरेंस कंपनी में डालेंगे कल भूकंप आ जाए सारी कंपनी उड़ जाती है कोई हिसाब नहीं, जमीन में गाड़ के रख देंगे भूकंप आएगा कहां का कहां चला जाएगा पता नहीं कहां चला जाएगा, चोर डकैत भी ले जाएंगे घर में रखेंगे वो भी कोई निश्चित नहीं, और उजगर रखेंगे तो गवर्नमेंट इनकम टैक्स के रूप में उठा ले जाएगी, सेल टैक्स के रूप में ले लेते हैं,
है बाबा के द्वारा ही करना चाह रहे
मकान बनाना चाह रहे तो बाबा के द्वारा
माने माने बाबा बैठ करके तुम्हारा मकान बनाए वहाँ
मधुबन जो बनाया था सभी का द्वारा बनाया
सभी का स्थान जो है वो सब मिलके बड़ा हॉल है बड़ा घर।
बाबा की चिंता मत करो अपनी चिंता करो अपने अपने धन की चिंता करो, बाबा को जब बनाना होगा तो बना लेंगे। और शहरों में जो बनते जा रहे हैं उसकी बाबा को चिंता है क्या? चिंता करने की बात ही नहीं, जब टाइम आता है तो बन के खड़ा हो जाता है। जिनकी समस्या ये है कि हम अपने धन को कहाँ डालें, उस समस्या का निदान बताया कि वो धन दिन दूना रात चौगना माउंट आबू में डालेंगे तो बढ़ता रहेगा। इधर उधर डालेंगे उसकी कोई गारंटी नहीं, धंधे दोरी में डालेंगे धंधे दोरी की कोई गारंटी नहीं, सब धंधों में नुकसान होने वाला है हो रहा है, सारे कल कारखाने बंद हो रहे हैं, सच्चाई से दुकान चलाने वाला दुकान चला ही नहीं सकता, धंधा करने वाला सच्चाई से चल ही नहीं पाता, दुनिया में झूठों का बोलबाला होता जा रहा है। बाबा के बच्चे तो भोले भाले हैं सच्चे हैं, क्या उनके पूछ नहीं पा रहे क्या पूछना चाहते
हैं? इंडिविजुअल मकान बना अलग अलग
बनाओ
बाबा, उनका पूछने का मतलब ये है मैंने अभी जाके उधर जमीन खरीदेंगे खरीद के उधर छोड़ के आ जाएंगे तो बार बार जाके देख नहीं पाएंगे ना, इसलिए
जो जो प्रॉपर्टी आपने खरीद के वहाँ डाल दी वो जैसे जमीन खरीद के डाल दी तो वो जमीन को ही उठा ले जाएगा क्या?
आज के दुनिया में तो दूसरे लोग रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं ना, तो
क्या कर लेते हैं
एक जमीन को दो तीन लोग भी रजिस्ट्रेशन करवा
लेते रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं तो पहले रजिस्ट्रेशन करवाया है या दोबारा रजिस्ट्रेशन 420 का करवाया है वो कागजों से पता नहीं चलेगा?
और उनका पूछने का मतलब ये है मैंने चार पांच लोग मिलकर मैंने बाबा को सौंप देंगे क्योंकि अंत में दो रोटी देने वाला तो बाबा है, हमको क्यों अलग अलग से खरीदना है, जो भी देना है बाबा का हाथ में देने से अच्छा है ना, ऐसा उनका पूछने का मतलब नहीं है।
बाबा तो ऐसा कोई एग्रीमेंट किसी को नहीं लिख के देते कि तुम अपनी जमीन ज्यादा दे दोगे तो हम तुम्हें जिंदगी भर तुम्हारे बाल बच्चों का पोषण करते रहेंगे। और ये कि सेवा के लिए देना चाहते हैं तो वो भी हमेशा के लिए नहीं लेंगे, बाबा को किसी की प्रॉपर्टी का क्या करना कि 99 साल के लिए आपको लिखवा आपसे लिखवा ले लीज एग्रीमेंट, बाबा को अगर ईश्वरी सेवा में लगाने के लिए देना है तो भी बाबा 10-11 साल से ज्यादा का नहीं लेंगे, क्योंकि इनकम टैक्स का नियम है कि अगर 12 साल से ज्यादा की प्रॉपर्टी लीज में ली जाती है तो वो उसी की मानी जाएगी, इनकम टैक्स ठोक देंगे।
क्यों बताया जाता है अर्ली वैदिक पीरियड है क्या?
क्या
अर्ली वैदिक पीरियड? अर्ली वैदिक पीरियड आता है अर्ली वैदिक पीरियड नहीं है।
अरे इतिहास में इसने पढ़ा होगा वैदिक काल, वैदिक काल की कोई हिस्ट्री नहीं है लोगों के पास, वो तो समझते हैं हजारों लाखों साल पहले पुराने टाइम पर लिखे गए हैं वेद, ऐसा थोड़ा ही है। वेद तो लिखे गए ही है 2500 साल के अंदर,
सत्युत्रेता का हिस्ट्री नहीं है।
हाँ, सत्युत्रेता की कोई हिस्ट्री है ही नहीं किसी के पास, हिस्ट्री उसे कहा जाता है जिसका प्रूफ और प्रमाण मिले।
उन्होंने
हिस्ट्री लिखने वाले मनुष्यों ने अपने मत से ऐसा लिख दिया है, ऐसा है थोड़े ही।
भारत देश में
ही
दिखाई देता है,
तो
दूसरे और देशों में भी दिखाई
देता है। अरे सत्युग त्रेता जब चलता है तो भारत में ही स्वर्ग होता है, दूसरे देश
होते नहीं।
पहले भी समुद्र से ऊपर नहीं थे और अभी विनाश होगा तब भी समुद्र के अंदर समा जाएंगे। दूसरे धर्म भी नहीं थे तो दूसरे देश भी नहीं थे, धर्म खंड भी नहीं होते हैं तो धर्म भी नहीं होते हैं, भारत देश ही होता है।
भारत में भी उत्तर की तरफ,
हाँ जी, भारत में भी दक्षिण भारत नहीं होता है, उत्तर भारत ही रहता है, भारत का छोटा हिस्सा ही होता है। और